अन्वय अनामिका जी के सामने बैठा था, पर अब भी उसके दिमाग में बस आन्या ही चल रही थी। अनामिका जी कुछ देर खामोशी से उसे देखती रही, फिर उन्होंने गंभीरता से सवाल किया, क्या हुआ अन्वय, किसी बात से परेशान लग रहे हो? अन्वय ने निगाहें उठाकर उन्हें देखा, फिर परेशान सा कहना शुरू किया, माँ, आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मैं थोड़ा कन्फ्यूज हो गया हूँ। जो महसूस हो रहा है उसको सच नहीं मान पा रहा हूँ, और जो दिख रहा है उस पर विश्वास करने से दिल इनकार कर रहा है, पर दिमाग कह रहा है कि जो दिख रहा है वही सच्चाई है। समझ नहीं आ रहा कुछ। उसकी बातों से ही जाहिर था कि वो कितना उलझ गया था अपने सवालों और विचारों के बीच। किसके बारे में सच और झूठ के भंवर में उलझे हो? अन्वय ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें कैसे बताता कि आन्या के बारे में सोच रहा है, और क्या सोच रहा है ये तो वो कभी उन्हें बताने की सोच भी नहीं सकता था। वो खामोश रहा तो उन्होंने ही आगे कहा, आन्या को लेकर जहन में सवालों का तूफान उठ रहा है ना, अगर उससे जुड़ा कोई सवाल है जिसने आपको परेशान किया हुआ है तो पूछ सकते हो, शायद हम आपकी परेशानी का हल दे सकें। अनामिका जी अब अन्वय के कुछ कहने का इंतजार करने लगीं। अन्वय कुछ पल खामोशी से उन्हें देखता रहा, फिर नजरें घुमाते हुए बोला, माँ, वो आज मैं उसके कमरे में गया था, मैंने उसकी पीठ पर वैसा ही निशान देखा जैसा मेरी पीठ पर बना है, उसके बाद अनजाने में हमारे लबों का स्पर्श हो गया। उस वक्त मुझे बहुत अजीब सा एहसास हुआ और आन्या उसके बाद बेहोश हो गई। पहले कभी आन्या को देखकर जहन में ऐसा कोई सवाल नहीं आया था, हमेशा से एक आम लड़की लगी थी, पर आज ऐसा महसूस हुआ जैसे वो इंसान नहीं है, बल्कि, कहते कहते वो खामोश हो गया। आपकी तरह एक वैम्पायर है, अन्वय की अधूरी बात को अनामिका जी ने पूरी कर दिया। उनकी बात सुनकर अन्वय की आंखें हैरानी से फैल गईं, वो आंखें बड़ी बड़ी करके उन्हें देखने लगा, पर अनामिका जी के चेहरे के भाव नहीं बदले। उन्होंने उतनी ही सहजता से आगे कहा, सही सुना है आपने, वही कहा है हमने और सच कहा है। आज जो आपको महसूस हुआ वो झूठ या कोई भ्रम नहीं है, बल्कि सच्चाई है। आन्या आम इंसान के रूप में सिर्फ तब तक थी जब तक आप उनके करीब नहीं गए थे। आपके बीच आज जो हुआ उसके बाद वो भी आपकी ही तरह एक वैम्पायर में तब्दील हो गई हैं। पर ऐसा कैसे हो सकता है माँ, जब तक मेरे दांतों से उसे स्पर्श ना हो वो इंसान से वैम्पायर में कैसे तब्दील हो सकती है? लबों के स्पर्श मात्र से कोई भी इंसान वैम्पायर कैसे बन सकता है? अन्वय की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। उसके सवाल को सुनकर अनामिका जी ने आगे कहा, आपने शायद हमारी बात को ध्यान से सुना नहीं, हमने कहा कि वो इंसान के रूप में सिर्फ तब तक थीं जब तक आप उनके करीब नहीं जाते, हमने ये नहीं कहा कि वो सच में एक आम इंसान ही थीं। आज आपने उनके अंदर जिन शक्तियों को महसूस किया है वो उन्हें जन्म से प्राप्त हैं, वो हमेशा से एक वैम्पायर ही थीं, पर उन्हें खुद को इस बात का एहसास नहीं था। उनकी शक्तियाँ उनके अंदर थीं पर जागृत नहीं थीं, और उनके जागृत करने के लिए आप दोनों का मिलन ज़रूरी था। आज आपके स्पर्श से उनकी सोई शक्तियाँ जागृत हो गई हैं और वो अपने वास्तविक रूप में बदल गई हैं, एक आम इंसान से एक वैम्पायर में तब्दील हो गई हैं, लेकिन शायद अभी भी उन्हें इस बात का एहसास नहीं है। आपके साथ साथ आज उन्होंने भी अपने अंदर की शक्तियों को महसूस किया होगा और वो उसे संभाल नहीं सकी होंगी, इसलिए बेहोश हो गई होंगी। उन्हें भले ही अब तक भी अपने अस्तित्व का एहसास नहीं है, पर आपको उनके वास्तविक पहचान का भान हो गया। ये कैसे हो सकता है माँ, उसके माता पिता आम इंसान हैं, वो एक इंसान की बेटी है, फिर वो वैम्पायर कैसे हो सकती है? और अगर वो वैम्पायर थी तो उसकी शक्तियों का मुझसे क्या संबंध है, और शक्तियों के जागृत होने का क्या मतलब हुआ? अन्वय के दिमाग में अनगिनत सवाल घूम रहे थे। उसकी उलझन को समझते हुए उन्होंने आगे कहा, आपके सभी सवालों के जवाब हैं हमारे पास, पर उनके जवाब देने से पहले हम आपको एक वाक्य के बारे में बताना चाहते हैं। ये बात अब से कई वर्षों पूर्व की है, तब आपके पिता और हमारा मिलन नहीं हुआ था। हम दोनों तो अलग अलग प्रजाति से थे, पर हमारी मुलाकात तब हुई जब हम दोनों ही इंसानी रूप में इंसानों के बीच रहा करते थे। उस वक्त आपके पिता और विक्रांत के पिता बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, उनकी मित्रता बहुत गहरी थी और उसकी गवाह हम खुद थे। आपके पिता की सोच भी बिल्कुल वैसी थी जैसे आपकी है, आप उन्हीं पर गए हैं। वो भी चाहते थे कि इंसानों की दुनिया में वैम्पायर हस्तक्षेप ना करें, दोनों खुशी खुशी अपने अपने समाज में अपने अपनों के साथ रहें। उन्हें इंसानी दुनिया बहुत अच्छी लगती थी, तो वो वैम्पायर होते हुए भी इंसानों के बीच इंसान बनकर रहते थे, और हमने भी अपनी पहचान छुपाकर इंसानी दुनिया में कदम रखा था सिर्फ आपके पिता को पाने के लिए, क्योंकि हमने उन्हें पहली बार जब इंसानी रूप में देखा था तभी उनसे प्रेम कर बैठे थे, पर हम जानते थे कि वो इंसान नहीं वैम्पायर हैं। ये भी जानते थे कि हमारा मिलन असंभव है, लेकिन दिल के हाथों मजबूर होकर हमने उनकी जिंदगी में कदम रखा। तब शाश्वत उनके साथ ही रहते थे, हमारा आपके पिता से मिलना जुलना बढ़ा, धीरे धीरे उन्हें भी हमसे प्रेम हो गया, पर यहाँ हमसे एक भूल हो गई। हमने ध्यान ही नहीं दिया कि उनके मित्र शाश्वत हमें पसंद करने लगे हैं। हालांकि हमने हमेशा से आपके पिता को ही प्रेम किया था, फिर भी उन्हें लगने लगा जैसे हम उनसे प्रेम करते हैं। हम इस बात से अनभिज्ञ थे और इंतजाम कर रहे थे कि आपके पिता अपने दिल की बात हमें बताएं और हम अपनी सच्चाई उन्हें बता सकें, पर हमारे सोच के हिसाब से कुछ नहीं हुआ। उसी दौरान भेड़ियों और वैम्पायर के बीच विवाद हो गया था, जिसने भयंकर रूप ले लिया। भेड़ियों द्वारा लोगों का शिकार किया जा रहा था और आपके पिता इसके सख्त खिलाफ थे, जिसकी वजह से विवाद बढ़ता गया। आपके दादाजी ने आपके पिता को गोद लिया था, वो उनके खास मंत्री के बेटे थे और आपके दादाजी को बहुत प्रिय थे। उन्हें उनके गुण हमेशा से राजा बनने योग्य लगते थे। वो सबको साथ लेकर आगे बढ़ने में विश्वास रखते थे और अमन चैन की कामना करते थे। जब वो विवाद बढ़ा तो वैम्पायर की तरफ से वो सामने आए सुलह के लिए, और भेड़ियों का प्रतिनिधित्व हमें करना पड़ा क्योंकि हम उनकी राजकुमारी थी और राजा की अनुपस्थिति में हमें ही उनके पद को संभालना था। हम दोनों आमने सामने थे। उन्हें पता चल गया था कि हम इंसान नहीं भेड़िए के कुनबे से हैं। विवाद सुलझा पर हमारा संबंध उलझ गया। शाश्वत भी हमारी असलियत जान गया और उसने इस मौके का फायदा उठाकर आपके पिता को भड़काना शुरू कर दिया, पर वो बहुत ही शांत और समझदार थे। उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। शाश्वत हम दोनों के बीच फूट डालकर हमें अपना मनाना चाहता था, पर ना वो हमें विश्वास में ले सका, ना ही आपके पिता को हमारे खिलाफ कर सका। एक बातचीत से हमारे बीच के मतभेद दूर हो गए। शाश्वत गुस्से में आ गए और षड्यंत्र रचने लगे हमें अलग करने के लिए। उसी दौरान आपके दादाजी, जिन्हें कई दिव्य शक्तियां प्राप्त थीं, जिनमें से एक भविष्य देखने की शक्ति थी, उन्हें आभास हो गया कि शाश्वत का रवैया बदलने लगा है। वो क्रूर बनते जा रहे हैं, अपने ही मत में रहते हैं, तो उन्हें भविष्य में आने वाले संकट का अनुमान लग गया। उन्होंने तत्काल फैसला लिया और इससे पहले कि शाश्वत उन्हें मारकर राजगद्दी हासिल कर पाते, उन्होंने आपके पिता को सम्राट घोषित कर दिया। उनका ये फैसला शाश्वत को नागवार गुजरा और उन्होंने खूब विरोध किया, पर कुछ सदस्यों को छोड़कर बाकी सभी ने आपके दादा के फैसले का समर्थन किया। शाश्वत अपने साथियों के साथ कुनबे से अलग हो गए, पर बदले की आग उनके सीने से धधक रही थी।
आपके दादाजी ने हमारा विवाह करवा दिया। उसके बाद वैम्पायर और भेड़िये समुदाय के बीच संबंध स्थापित हो गया। आपके पिता आपकी ही तरह ऐसी जिंदगी नहीं बिताना चाहते थे, तो राजभार आपके दादाजी ने ही संभाला और आपके पिता हमारे साथ सुकून से इंसानी जिंदगी बिताने लगे। शादी को एक साल ही हुआ था कि एक बार फिर शाश्वत ने हमारी जिंदगी में कदम रखा, और इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा उग्र और खतरनाक हो गए थे। उन्होंने आपके पिता और हम पर हमला किया, जबकि हमें इसका आभास नहीं था। अचानक हमला हुआ और उन्होंने ऐसी बूटी का इस्तेमाल किया हम पर, जिससे हम दोनों की शक्तियां क्षीण हो गईं। उन्होंने हमें बुरी तरह घायल कर दिया, पर मार नहीं सके। आपके पिता ने अपनी सूझबूझ का प्रयोग किया और हम दोनों उन्हें चकमा देकर भाग गए। वो हमारे पीछे थे। भागते भागते बचने के लिए हमें घर में जा घुसे। वो एक ब्राह्मण का घर था, वहां बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती थीं। उस कुटिया में हमें एक लड़की मिली, सरिता नाम था उसका। अपने नाम के ही अनुरूप उनका व्यवहार था। उन्होंने हमें घायल देखा तो अपने दोस्त को वहां बुला लिया, जो एक वैद्य का बेटा था। उन दोनों ने मिलकर हमारा उपचार किया, जिससे शरीर के घाव भर गए, पर हमारी शक्तियां नहीं लौट सकीं। शाश्वत और उसके साथ अंदर नहीं आ सके। वो ब्राह्मण भी दो दिन के लिए बाहर गए हुए थे, तो सरिता ने हमें वहीं आराम करने को कहा। उनसे बात करते हुए हमें ज्ञान हुआ कि सरिता और सागर बचपन के मित्र हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं पर कभी जाहिर नहीं किया। दोनों का कुल अलग था, इसलिए अपने प्रेम को छुपाते हुए दोस्त की भांति जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन हम वहीं ठहरे, पर हम और आपके पिताजी नहीं चाहते थे कि हमारी वजह से उन बेगुनाहों को कोई खतरा हो, इसलिए अगले दिन रात के अंधेरे में हम वहां से निकल गए। ये हमारी दूसरी भूल थी। हमने सोचा शाश्वत अब वहां से चला गया होगा तो हम सकुशल अपने कुनबे में चले जाएंगे, उसके बाद आपके दादाजी इस समस्या का कोई ना कोई उपाय निकाल लेंगे। पर शाश्वत वहीं छिपकर हमारे बाहर आने का इंतजाम कर रहा था। उनसे बचते बचाते हम जंगल तक पहुंच गए, पर तभी लताओं की बेड़ियों ने हम दोनों को जकड़ लिया। वो बेड़ियां प्राणघातक रसायनों से लिप्त थीं। धीरे धीरे वो हमारे प्राण ले रही थीं। ये सब शाश्वत का बिछाया जाल था हमारे लिए। हमारे मरने से उन्हें अपना राज मिल जाता और हमसे उनका बदला भी पूरा हो जाता। ये बात उसने खुद हमें बताई थी। हमें मौत के मुंह में पहुंचाकर वो वहां से चले गए। एक दिन गुजर गया। ना हम खुद अपनी मदद कर पा रहे थे, ना किसी को मदद के लिए बुला पा रहे थे। अगले दिन शाम को अचानक ही वहां किसी की आवाजें आने लगीं। हम आवाज पहचान गए। सागर और सरिता की आवाजें थीं। हमने उन्हें आवाज दी तो वो दोनों वहां पहुंचे। सागर जड़ी बूटियों के लिए उस रोज जंगल आए थे और साथ में सरिता भी आ गई थी। उन दोनों ने हमें और आपके पिता को उन बेड़ियों से आजाद करने की बहुत कोशिश की, पर नहीं कर पाए। अंत में आपके पिताजी ने उन्हें आपके दादाजी को ये खबर देने के लिए भेज दिया, साथ में अपने गले में हमेशा पहनने वाला धागा दे दिया जो आपके दादाजी ने उन्हें दिया था, ताकि वो दोनों सकुशल उन तक पहुंच जाएं। आपके पिताजी का विश्वास जीत गया। वो दोनों आपके दादाजी को ले आए।
उन्होंने हमें उन बेड़ियों से आज़ाद कर दिया, पर उसी वक्त शाश्वत के साथियों ने हम पर हमला कर दिया। हम दोनों के पास हमारी शक्तियाँ नहीं थीं। आपके दादाजी उनसे लड़ रहे थे और बाकी के साथी भी व्यस्त थे। इतने में मौका देखकर शाश्वत ने आपके पिताजी और हम पर वार किया, पर बीच में सागर और सरिता आ गए। हमारी जगह उन दोनों के प्राण चले गए। अपने आखिरी वक्त में भी वो अपने दिल की भावनाओं को एक दूसरे से साझा नहीं कर सके। हमने देखी थी उनकी आंखों में बिछड़ने की तड़प। कितना प्रयास किया था उन्होंने कि एक आखिरी बार एक दूसरे को छू सकें, पर ऐसा नहीं हो सका। उनका मिलन अधूरा रह गया हमारी वजह से। शाश्वत और उसके साथ वहां से भाग निकले। उन दोनों की मौत का बहुत गहरा सदमा लगा था हमें कि हमारी वजह से उन निर्दोष जोड़े के प्राण चले गए। मिलन से पहले ही उनका वियोग हो गया। आपके दादाजी ने हमें और आपके पिताजी को हमारी शक्तियां लौटा दी। उन दोनों का शरीर देखते देखते राख में तब्दील हो गया और हमारी आंखों से ओझल हो गया।